Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
संघ के कार्यकर्ता अपना काम करते रहते हैं, प्रचार प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागते। संघ की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रचार अपने आप होने लगता है, माध्यमों का ध्यान जाता है, लोगों की चर्चा में संघ आता है, तो संघ क्या है इसको जानने का सभी लोग प्रयास करते हैं। फिर कोई काम बढ़ता है, एक शक्ति स्वरूप बन जाता है, तो किसी किसी को उस शक्ति का डर भी लगता है, तो फिर उसके बारे में अपप्रचार भी होता है। इसमें कोई भी बात अस्वाभाविक नहीं है। एक धारा ये निकली कि नहीं, अपने देश के लोगों में राजनीतिक समझदारी कम है, सत्ता किसकी है इसका क्या महत्व है लोग कम जानते हैं, अपने देश के लोगों की राजनीतिक जागृति करनी चाहिए, और इसलिए कांग्रेस के रूप में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में खड़ा हुआ। उसमें भी अनेक सर्वस्व त्यागी महापुरुष जिनकी प्रेरणा आज भी हमारे जीवन के प्रेरणा में काम करती है ऐसे पैदा हुए, और देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए रास्ते पर लाकर खड़ा करने का काम उस धारा ने किया, एक बड़ा योगदान। ओपन संगठन संघ है, यहां प्रत्येक स्वयंसेवक पूछ सकता है, प्रत्येक स्वयंसेवक विचार करता है, प्रत्येक स्वयंसेवक का विचार चर्चा में आने की पद्धति है। अब लाखों स्वयंसेवक है उनकी मैं अकेला नहीं सुनता हूं, लेकिन शाखा स्तर से ऐसी व्यवस्था है, विचार आते आते ऊपर प्रतिनिधि सभा में सहमति बनती है, जो सहमति बनती है उसमें सब अपना अपना विचार विलीन कर देते हैं। मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन आपको देखनी है तो आप संघ में आइए। संघ हमारा स्वावलंबी है, खर्चा जो करना पड़ता है वो हम ही जुटाते हैं। संघ का काम चलाने के लिए एक पाई भी बाहर से हम लेते नहीं, किसी ने लाकर दी तो हम लौटा देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयंसेवकों की गुरु दक्षिणा पर चलता है, साल में एक बार भगवे ध्वज को गुरु मानकर उसकी पूजा में दक्षिणा समर्पित करते हैं स्वयंसेवक। भगवा ध्वज गुरु क्यों? क्योंकि अपनी तब से आज तक की परंपरा का वो चिन्ह है। तक की स्वतंत्र भारत का ध्वज कौन सा हो, इसका फ्लैग कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरिचित सुप्रतिष्ठित भगवा झंडा हो। बाद में उसमें परिवर्तन हुआ, तिरंगा ध्वज आ गया, वो हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका भी पूर्ण सम्मान रखते ही है। यह भी प्रश्न उठाया जाता है, शाखा में भगवा झंडा लगता है, तिरंगा झंडे का क्या? तिरंगे झंडे के जन्म से उसके सम्मान के साथ संघ का स्वयंसेवक जुड़ा है, मैं आपको सत्य कथा बता रहा हूं। निश्चित होने के बाद, उस समय तो चक्र नहीं था, चरखा था ध्वज पर, पहली बार फैजपुर के कांग्रेस अधिवेशन में उस ध्वज को फहराया गया, 80 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाया था, नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे, तो वो बीच में लटक गया, ऊपर पूरे जा नहीं सका, और इतना ऊंचा चढ़ के उसको सुलझाने का साहस किसी का नहीं था। एक तरुण भीड़ में से दौड़ा, वो सरसर उस खंभे पर चढ़ गया, उसने वो रस्सियों की गुत्थी सुलझाई, ध्वज को ऊपर पहुंचा के नीचे आ गया, तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंधे पर लिया, नेहरू जी के पास ले गए, नेहरू जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम आओ शाम को खुले अधिवेशन में, तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन फिर कुछ नेता आए, कहा कि उसको मत बुलाओ, वो शाखा में जाता है। जलगांव में फैजपुर में रहने वाले श्री किशन सिंह राजपूत नाम के वो स्वयंसेवक थे, उस समय 5 वर्ष या 6 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया, वृद्ध हो गए। डॉक्टर हेडगेवार को पता चला, डॉक्टर हेडगेवार प्रवास करके गए, डॉक्टर हेडगेवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चांदी का छोटा सा पुरस्कार के रूप में भेज दिया, उसका अभिनंदन किया। तब से पहली बार फहराएगा तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंसेवक जुड़ा है। जब पहली बार कांग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया, हम संघ का डोमिनेशन नहीं चाहते, उल्टा है संघ का विचार, अगर संघ डोमिनेशन के कारण इस देश में कुछ अच्छा हुआ ऐसे इतिहास लगेगा तो वो संघ की बहुत बड़ी पराजय होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का इतिहास, देश का वर्तमान देश के लोगों के कारण बने, महापुरुष, विचारधाराएं, तत्वज्ञान, ये सब सहायक होगा लेकिन सामान्य व्यक्ति के कर्तृत्व से देश का परम वैभव आना चाहिए। प्रार्थना में हम कहते हैं विजयत्री चना संवता कार्य शक्ति, हमारे सामूहिक शक्ति के आधार पर, हमारे यानी संघ के नहीं, हिंदू समाज के सामूहिक शक्ति के आधार पर। अगर उसमें ऐसा हो गया कि कोई संघ आ गया और उसने इस देश का उद्धार कर दिया तो ये संघ को मंजूर नहीं, इसलिए बहुत अच्छे काम बहुत संचुक करते हैं, उसकी प्रसिद्धि प्रचार में नहीं जाते। अब बहुत दबाव बढ़ गया है, संघ बड़ा हो गया है और ये हम नहीं करते तो गलतफहमी फैलाने का अवसर मिलता है, इसलिए हाल के 21 वर्षों में हम क्या कर रहे इसका हम ब्यौरा रखते हैं, हम अपनी पीठ कभी नहीं थपथपाते। स्वयंसेवक है, कितने काम करते हैं लेकिन प्रसिद्ध सब नहीं होते, दुनियादारी में चलना है तो संगठन के पदाधिकारी होने पड़ते हैं, फिर बड़ा बन गया है तो माध्यमों के लोग पीछे पड़ते हैं, दिखाते हैं, इसलिए किसी को सामने आना पड़ता है, नहीं तो मोहन भागवत सरसंघ चालक बन गया और उसके रोज फोटो छप रहे, ये मोहन भागवत के लिए बहुत परेशानी का विषय है, क्योंकि ये संघ की पद्धति नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप सब अच्छे व्यक्तियों को फेसलेस बना रहे हो, हाँ भाई बात सही है, हम फेसलेस बनते हैं क्योंकि ये भी अहंकार न रहे कि मैंने किया। अच्छे कामों में दूसरों की मदद करना ये सबके लिए खुला है, वो केवल वही उन्हीं संगठनों को करना है ऐसी बात नहीं है। अच्छे काम में जो कोई है, हमारी जितनी शक्ति है हम उसकी मदद करेंगे, हमको विचारधारा का संकोच नहीं है, हमको संघ के बारे में उनका क्या मत है इसका भी संकोच नहीं है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रामाणिकता से कर रहे हैं, हमारे स्वयंसेवक है वहां प्रभावी, वो जरूर मदद करेंगे। और दूसरी बात है कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते समय महिलाओं का क्या, तो ये प्रश्न डॉक्टर एडगार को एक महिला ने ही पूछा, 1931 में पूछा कि आप बात कर रहे हैं हिंदू समाज के संगठन की, 50% महिलाओं को तो वैसे ही छोड़ दिया आपने। तो डॉक्टर हेडगेवार ने उनको कहा कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, परंतु आज वातावरण ऐसा नहीं है कि पुरुष जाकर महिलाओं में काम करे, इससे कई प्रकार की गलतफहमियों को मौका मिलता है, कोई महिला अगर करने को जाती है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। तो उस महिला ने इसी प्रकार चलने वाला एक राष्ट्र सेविका समिति नाम का संगठन चलाया, आज वो भी भारतव्यापी संगठन बन गया है। संघ के संस्कारों की कार्य पद्धति पुरुषों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति में, ये दोनों समांतर चलेंगे, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, एक दूसरे की हमेशा मदद करके चलेंगे। वो उस समय तय हुआ, अगर इसको बदलना है तो दोनों तरफ लगना चाहिए कि इसको बदलना है, तब वो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। पूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है, इसमें संघ को पराया कोई नहीं, जो आज हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, ये हमारा पक्का है, उनके विरोध से हमारी क्षति न हो इतनी चिंता हम जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग तो सर्वलोक युक्त भारत वाले लोग हैं, मुक्त वाले नहीं है, संघ के स्वयंसेवक के नाते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते सबको जोड़ने का हमारा प्रयास है और इसलिए सबको बुलाने का भी हमारा प्रयास रहता है।
और इसलिए संघ के जन्म से ही संघ ने ये निश्चित किया है कि राजनीति से हमारा संगठन दूर रहेगा, ये स्पर्धा की राजनीति नहीं करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, संघ का कोई भी पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल में पदाधिकारी बिल्कुल नहीं बन सकता, और चुनाव की वोटों की इस राजनीति से संघ को दूर रहना है। लेकिन संघ का काम संपूर्ण समाज को जोड़ने का काम है। इसलिए अपने जन्म से ही संघ ने स्वयं तय किया है कि ऐसी जो दिन ब दिन की रोजमर्रा राजनीति है उसमें हम नहीं जाएंगे। हमारे मत है, संघ की विचारधारा के नाते संघ के स्वयंसेवकों के मत है, नीति के बारे में मत है। कौन राज्य करे ये तो चुनाव जनता करती है, परंतु कैसा चले राष्ट्रहित में, इस राष्ट्र नीति के बारे में हमारे मत है। और हम पहले से बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं, और जितनी शक्ति है उतना उसके अनुसार हो इसका प्रयास भी करते हैं। वो प्रयास हमारा लोकतांत्रिक रीति से ही होता है। संघ को राजनीति से परहेज है, इसका मतलब वो घुसपैठियों के बारे में न बोले ऐसा नहीं है। वो ये सब राष्ट्रीय प्रश्न है, राजनीति की उसमें भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, परंतु प्रश्नों के सुलझने का न सुलझने का परिणाम पूरे देश पर होता है। ऐसे विषय में संघ अपना मत रखता है। जो एक दल चलता है उस दल में स्वयंसेवक क्यों है, उस दल में बहुत सारे पदाधिकारी क्यों हैं, उस दल के आज पंत प्रधान है, राष्ट्रपति जी है, सब लोग स्वयंसेवक है, तो इसलिए। और ये जो लोग कयास लगाते हैं कि नागपुर से फोन जाता होगा और बात होती होगी, ये बिल्कुल गलत बात है। एक तो वहां काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता सब मेरी आयु के हैं, तो वह मेरे से सीनियर है, और संघ कार्य का जितना मेरा अनुभव है कदाचित उससे अधिक अनुभव उनको राजनीति का है। उनको अपनी राजनीति चलाने के लिए किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम सलाह दे भी नहीं सकते। परिचित है तो हालचाल पूछते हैं, उनको सलाह चाहिए तो वो पूछते हैं, अगर हम दे सकते हैं तो हम देते हैं, परंतु उनके राजनीति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं, सरकार की नीतियों पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है। वो हमारे स्वयंसेवक है, उनको विचार दृष्टि सब मिली है, वो भी समर्थ है अपने अपने कार्यक्षेत्र में उन विचारों को प्रत्यक्ष करने के लिए। ऐसा स्वतंत्रता, अलगता, स्वायत्तता से स्वावलंबी होकर उनका काम चलता है और चलना चाहिए, ऐसा हमारी इच्छा है। देश में, देश की व्यवस्था में पावर नाम की जो चीज है उसका जो सेंटर संविधान से तय हुआ है वही रहेगा। कोई बाहर का दूसरा केंद्र खड़ा हो ये गलत बात हम मानते हैं, इसलिए ऐसा हम कभी करते नहीं। और इसलिए संघ का राजनीति से संबंध क्या है, क्यों उसी एक दल में ज्यादा स्वयंसेवक है, अब ये तो हमारा प्रश्न नहीं है। बाकी दलों में जाने की उनकी इच्छा क्यों नहीं होती, ये उनको विचार करना है। हम किसी स्वयंसेवक को किसी एक विशिष्ट राजनीतिक दल का काम करने के लिए नहीं कहते। राष्ट्रनीति के बारे में हम बोलते हैं, और अगर हमारी शक्ति है हम जिसको उचित मानते उसको करवाने की, तो उसको हम लगाते जरूर है, और ये हम छुपे छुपे नहीं करते, ये डंके की चोट पर करते हैं, क्योंकि व्यक्ति निर्माण ये हमारा मुख्य काम है, वही हम करते हैं। लेकिन जो निर्मित व्यक्ति है वो निठल्ले तो बैठे नहीं रहेंगे, वो नागरिक है देश के, सब लोगों के जैसा उनका भी देश के जीवन के समस्त अंगों में अपना सहभाग रहना अपेक्षित है, वो रहता है। उसमें किसी दल का स्वार्थ नहीं, किसी विचारधारा के प्रभाव की बात नहीं, केवल भारत हित की, राष्ट्र हित की बात रहती है। किसी के प्रति बैर नहीं है और किसी के प्रति अधिक दोस्ती नहीं है। राष्ट्रनीति के बारे में हम बोलते हैं, और अगर हमारी शक्ति है हम जिसको उचित मानते उसको करवाने की, तो उसको हम लगाते जरूर है, और ये हम छुपे छुपे नहीं करते, ये डंके की चोट पर करते हैं, क्योंकि व्यक्ति निर्माण ये हमारा मुख्य काम है, वही हम करते हैं। लेकिन जो निर्मित व्यक्ति है वो निठल्ले तो बैठे नहीं रहेंगे, वो नागरिक है देश के, सब लोगों के जैसा उनका भी देश के जीवन के समस्त अंगों में अपना सहभाग रहना अपेक्षित है, वो रहता है। उसमें किसी दल का स्वार्थ नहीं, किसी विचारधारा के प्रभाव की बात नहीं, केवल भारत हित की, राष्ट्र हित की बात रहती है। किसी के प्रति बैर नहीं है और किसी के प्रति अधिक दोस्ती नहीं है। बहुत दूर क्यों, जब हम भारतीय कहते हैं तो वो केवल भारत नाम के भूगोल का नाम नहीं रहता, क्योंकि भारत का भूगोल तो बदलता रहा है, कम ज्यादा होते रहा है। तो भारत एक स्वभाव का नाम है। ये सारे शब्द समानार्थी शब्द है, लेकिन इसके आशय को स्पष्ट रूप से बनाने वाला एक शब्द है हिंदू। इसलिए संघ हिंदू इस शब्द को आग्रह पूर्वक लेकर चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भारत शब्द का उपयोग करते हैं, जो इंडिक शब्द का उपयोग करते हैं, जो आर्य शब्द का उपयोग करते हैं, उनसे हमारा कोई झगड़ा है या विरोध है। हम जानते हैं कि उनको कहना वही है, हमारे लिए ये शब्द आग्रह का शब्द है, उनके लिए वो होगा, बहुत अच्छी बात है, इसको लेकर झगड़ा होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आशय की बात तो एक ही है, विविधता में एकता। सभी भारत से निकले संप्रदायों का जो सामूहिक मूल्य बोध है उसका नाम हिंदुत्व है। लेकिन अब संप्रदाय है, प्राचीन है, चले है, तो हमारा धर्म है तो है, तो हम मान्य करते हैं ना। सभी विविधताओं का अपने यहां स्वीकार है। भारत की पहचान वो बनी है, ये वैश्विक धर्म है, केवल भारत के लिए नहीं है, लेकिन भारत में इसका संगोपन हुआ, निर्माण हुआ, संगोपन हुआ, और एक ट्रस्टी के नाते समय समय पर विश्व को इस ज्ञान को देने वाला भारत है। अंग्रेजी से हमारी कोई शत्रुता नहीं है, उत्तम अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए, और दुनिया में भी अपने अंग्रेजी वक्तृत्व की छाप बना सकते हैं, ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हमारे देश के भी होने चाहिए। भाषा के नाते किसी भाषा से शत्रुता हम नहीं करते, लेकिन देश की उन्नति के नाते हमारी मातृभाषाओं में शिक्षा हो, इसकी आवश्यकता है। फिर प्रश्न आता है कि हमारी तो अनेक भाषाएं हैं, तो एक भाषा हमारी क्यों नहीं? तो किसी एक भारतीय भाषा को हम सीखे, इसका मानस हमको बनाना पड़ेगा। हिंदी की बात स्वाभाविक रूप से चली है, पुराने समय से चली है, अधिक लोग हिंदी बोलते हैं इसलिए चली है, लेकिन ये मन बनाना पड़ेगा। कानून बनाने से नहीं होगा, थोपने से नहीं होगा। आखिर एक भाषा की बात हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमको देश को जोड़ना है। एक भाषा बनाने से अगर देश में विरोध खड़ा होता है, आपस में कटुता बढ़ती है, तो हमको तो ये सोचना चाहिए कि मन हम कैसा बनाए। मेरा अनुभव ऐसे कहता है, हिंदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में काम करना पड़ता है देश में अधिकांश भाग में, इसलिए अन्य प्रांतों के लोग, बहुत से लोग हिंदी सीख रहे, सीखते हैं। हिंदी प्रांतों के लोगों का हिंदी में चल जाता है, इसलिए वो दूसरी भाषा नहीं सीखते। क्यों ना हिंदी बोलने वालों ने भी दूसरे किसी प्रांत की एक भाषा को सीखना चाहिए, तो ये मन मिलाप जल्दी होगा, और हमारी एक राष्ट्रभाषा और उसमें सारा कारोबार, ये काम जल्दी हो जाएगा। ये करने की आवश्यकता है। गाय का क्यों? किसी भी प्रश्न पर कानून हाथ में लेना, हिंसा करना, तोड़फोड़ करना, ये अत्यंत अनुचित अपराध है, और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए। परंतु गाय, ये परंपरागत श्रद्धा का विषय तो है ही, मानव बिंदु माना जाता है गाय। मैं जानवरों का डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं उस शास्त्र को, उसके हवाले से कह रहा हूं। अपने देश के छोटे किसान जो बहुसंख्या में है, उनके अर्थायाम का आधार गाय बन सकता है, दूसरा कुछ नहीं बन सकता। अनेक ढंग से वो गाय उपकारी है। अब सारी बातें बाहर आ रही है, ए टू मिल्क की बात होती है, पहले नहीं थी, अब मालूम हो गया विज्ञान को। तो गोरक्षा तो होनी चाहिए, संविधान का भी मार्गदर्शक तत्व है, तो उसका पालन करना चाहिए। लेकिन गोरक्षा केवल कानून से नहीं होती, गोरक्षा करने वाले देश के नागरिक गाय को पहले रखे। गाय को रखेंगे नहीं और खुला छोड़ देंगे तो उपद्रव होगा, जो गोरक्षा के बारे में आस्था पर प्रश्न लगता है। इसलिए गो संवर्धन, इसका विचार होना चाहिए। गाय के जितने सारे उपयोग हैं सामान्य रोजमर्रा के जीवन में, वो कैसे आज लागू किए जाए, कैसे उसका ज्ञान दिया जाए, कैसे तकनीकी का उपयोग करके उसको घर घर तक पहुंचाया जाए, इस पर बहुत लोग काम कर रहे हैं। वो गोरक्षा की बात करते हैं, वो लिंचिंग करने वालों में नहीं है, वो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, सात्विक प्रकृति के लोग हैं, केवल संघ के स्वयंसेवक भी नहीं है, पूरा का पूरा जैन समाज इस पर तुला है, और भी अनेक लोग हैं। अच्छी गौशालाएं चलाने वाले, भक्ति से चलाने वाले मुसलमान भी अपने देश में बहुत जगह है। तो इन सब लोगों को लिंचिंग के साथ कभी जोड़ना नहीं चाहिए, उनके कार्य को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपने देश के सामान्य व्यक्ति के हित का काम है, अपने देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा आधार साबित हो सकता है। और इसलिए गौ तस्कर हमला करते हैं तो उसको भी अब लिंचिंग पर आवाज करते हैं, और गौ तस्कर हमला करते और हिंसा करते उस पर आवाज नहीं होती, ये दोगली प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। इन सबका समाधान यही है, गाय के बारे में लोगों में जागृति लाना, उसके क्या क्या उपयोग है, हो रही है, बढ़ रही है, और सारी बातें आजकल कागजों में नमूद है, वैज्ञानिकों में शोध हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं, और गौ रक्षा का काम करने वाले लोग सात्विक प्रवृत्ति से इस एक काम को बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ेगा। जो उपद्रवी तत्व है उनके साथ जोड़कर इनको देखना नहीं, इतना कर ले हम और समाज को जागरूक करें तो गौ रक्षा का काम होगा, देश का लाभ होगा, और गाय के सान्निध्य का ये प्रत्यक्ष अनुभव है, हाथों से गौसेवा करने वाले की आपराधिक प्रवृत्ति कम हो जाती है। जेल की गौशालाओं में ये प्रयोग हो चुके हैं, तो देश का ये अपराध वगैरह भी कम हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। एक गुलाबराव महाराज हो गए, उनको भी यही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने जो उत्तर दिया वो ही मैं आपको देता हूं। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों, ऐसा पूछा गया, तो उन्होंने कहा अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों। सामाजिक विषमता को हटाकर समाज में सबके लिए अवसरों की बराबरी प्राप्त हो, इसलिए सामाजिक आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया है। संविधान सम्मत सभी आरक्षणों को संघ का पूरा समर्थन है। बीच बीच में वक्तव्य होते उसमें से अर्थ निकाले जाते, ये बात ध्यान में रखिए। सामाजिक विषमता दूर करने के लिए संविधान में जितना जहां आरक्षण दिया गया है उसको संघ का पूरा समर्थन है और रहेगा। आरक्षण कब तक चलेगा इसका निर्णय जिनके लिए आरक्षण दिया गया है वही करेंगे, उनको जब लगेगा कि अब इसकी आवश्यकता नहीं हमको तो फिर वो देखेंगे, लेकिन तब तक इसको जारी रहना चाहिए, ऐसा संघ का बहुत सुविचारित और जब से ये प्रश्न आया है चर्चा में तब से मत है, उसमें बदल नहीं हुआ है। अब क्रीमी लेयर को क्या करना, और लोग मांगते हैं सामाजिक आधार पर आरक्षण संविधान में है, संप्रदायों के आधार पर नहीं है, क्योंकि सभी संप्रदाय कभी ना कभी समाज के अग्रणी वर्गों में रहे हैं अपने यहां, तो उनके धारा 370 और 35 के बारे में हमारे विचार सर्वपरिचित है, हम उनको नहीं मानते, यानी वो नहीं रहना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। संविधान का मार्गदर्शक तत्व तो है, और इस दृष्टि से इसको कहा जाता है कि एक देश के लोग एक कानून के अंदर रहे, एक कानून के अंदर रहने का मन बने समाज का। समान नागरिक संहिता की जब चर्चा निकालते लोग तो उनका रुख रहता है हिंदू और मुसलमान, लेकिन केवल इतना नहीं है, सबकी परंपराओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, हिंदुओं की भी। फिर आज दायभाग भी चलता है और मिताक्षरा भी चलता है, अपने जनजातीय बंधुओं के परंपरागत कानून भी चलते हैं कि सब विविधता को ध्यान में रखते संविधान में अनुमति है, ये सारा ध्यान में रखकर किसी एक संहिता के लिए समाज का मन बने ये प्रयास होना चाहिए और वास्तव में देश की एकात्मता को समान नागरिक संहिता की बात पुष्ट करती है, लेकिन वो एकता के लिए है, उसके लागू करने से समाज में और गुट तैयार नहीं होने चाहिए, इसकी चिंता करते हुए धीरे धीरे उसको लाना चाहिए। ये बात मैं भी कर रहा हूँ अभी, लेकिन ऐसी ही बात अपने संविधान के मार्गदर्शक तत्वों ने संविधान में बताई है कि सरकार इस तरफ ले जाए मामले को, तो ले जाने की ये पद्धति है कि सबका साकल्य से विचार करते हुए कैसी संहिता हो उसका विचार करना, समाज में उसके लिए मन बनाना और उसको लागू करना। किसी दल का समर्थन हमने कभी किया नहीं है 93 सालों में। हमने एक नीति का समर्थन जरूर किया है और हमारे नीति के समर्थन करने का लाभ जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है वैसे राजनीतिक दलों को मिल सकता है, जो उसका लाभ ले सकते हैं वो ले जाते हैं, जो नहीं ले सकते वो रह जाते हैं। इमरजेंसी के समय हमारा इमरजेंसी को विरोध था, हमने इमरजेंसी के विरोध की नीति का पुरस्कार किया। जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े वो अनेक दलों के लोग थे, हमने ऐसा विचार नहीं किया कि जनसंघ को इसका लाभ मिले। उसमें बाबू जगजीवन राम भी थे, उसमें एस एम जोशी साहब, नागा गोरे साहब भी थे, उसमें गोपालन जी मार्क्सवादी पार्टी के भी थे, सबको लाभ मिला है उसका, सबके लिए काम किया है स्वयंसेवकों ने। केवल एक चुनाव कभी ऐसा हुआ था, राम मंदिर की नीति का हम समर्थन कर रहे थे और केवल भाजपा ही उसके पक्ष में थी, तब केवल भाजपा को लाभ मिला।
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.